नमस्कार भारत, आज है 26 जुलाई दिन बृहस्पतिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। पाकिस्तान में मतगणना जारी, रुझानों में इमरान खान की पार्टी आगे, बाकी पार्टियों का हमलावर अंदाज।
बहुत ही खतरनाक बात है, इस पूरे इलेक्शन पर सवाल या निशान अब उठ रहा है, जो 3-4 घंटे से हम ट्रेंड देख रहे हैं।
ब्रिक्स का सालाना शिखर सम्मेलन आज से जोहानिसबर्ग में। अफ्रीका में भारत की दिलचस्पी की वजह क्या है?
ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम कई सालों से इसको कोशिश कर रहे हैं, अब इसको लागू करने की कोशिश है। अभी तो थ्योरेटिकली चल रहा था इस तरह।
मंगल ग्रह पर झील मिली, लेकिन जीवन की संभावना कितनी, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान में कल हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी को बढ़त मिल रही है। रुझानों के बाद इमरान खान के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि नतीजों से छेड़छाड़ की जा रही है और वो इन्हें चुनौती देने के लिए सभी राजनीतिक और कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की सेना पर इमरान खान की पार्टी का समर्थन करने के भी आरोप लगे हैं, जिन्हें सेना ने खारिज कर दिया है। इमरान खान की पार्टी के एक नेता आरिफ अलवी ने भी इन आरोपों को नकारा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी चुनावों में धांधली के आरोप लगाए हैं। यूरोपीय संघ के आयुक्त जॉन क्लॉद यूंकर और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक व्यापार युद्ध से बचने के लिए कई उपाय करने पर सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस में हुई वार्ता के बाद बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक रिश्तों का नया युग शुरू हुआ है। दोनों ही नेताओं ने कहा कि वो व्यापारिक उत्पादों पर जीरो टैक्स लगाने की ओर बढ़ने पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय संघ अमरीका से अधिक तरल प्राकृतिक गैस भी खरीदेगा। दोनों ही पक्ष इस मुद्दे पर वार्ता पूरी होने तक कोई नया कर न लगाने पर भी सहमत हुए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
We met right here at the White House to launch a new phase in the relationship.
अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच रिश्तों के नए दौर की शुरुआत करने के लिए हमने यहीं व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। नज़दीकी दोस्ती का दौर जिसमें व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और हम दोनों की ही जीत होगी। हम वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए साथ मिलकर और बेहतर काम करेंगे और मिलकर आतंकवाद से भी लड़ेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। दक्षिण पश्चिमी सीरिया में हुए सिलसिलेवार हमलों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वघोषित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में ये हमले किए हैं। हाल के महीनों में हुए ये सबसे भीषण हमले हैं जिनमें सरकार के समर्थकों को निशाना बनाया गया है। इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स से सटे सीरिया के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सीरियाई सैन्य बलों ने चरमपंथियों और विद्रोहियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें उन्हें कामयाबियां भी मिल रही हैं। नाइजीरिया में किसानों और चरवाहों के बीच हिंसा पर आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संघर्ष में बोको हराम की हिंसा से 6 गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का कहना है कि जनवरी के बाद से शुरू हुई हिंसा में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार लोग बेघर हुए हैं। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, नस्लीय मिलिशिया की बढ़ती संख्या और नए चराई विरोधी कानूनों को हिंसा की वजह बताया गया है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि यह हिंसा धार्मिक रूप भी ले सकती है, क्योंकि चरवाहे अधिकतर मुसलमान हैं और किसान अधिकतर ईसाई हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन सेव द चिल्ड्रन ने यमन में चल रहे युद्ध की वजह से नए हैजा संकट की चेतावनी दी है। जुलाई के पहले सप्ताह में ही हैजा के 3000 नए मामले सामने आए हैं। संगठन सबसे ज्यादा चिंतित बंदरगाह वाले शहर हुबैदा के हालात को लेकर है, जहां सऊदी के समर्थन वाले सरकारी सैन्य बलों और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। हुबैदा में बीते साल हैजा की वजह से 2300 से अधिक लोग मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक के जरिए भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर लाइव। मैं हूं संदीप सोनी। साजिश और धांधली के आरोपों के बीच अब से लगभग 2 घंटे पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पहले आधिकारिक नतीजे की घोषणा कर दी है, जो रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अदनान के हक में गया है। आज तड़के 4:30 बजे से पहले तक पाकिस्तान के चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा जा रहा था कि पहले आधिकारिक नतीजे की घोषणा करने में उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तकनीकी खामी को जिम्मेदार बताया। रुझान जो मिल रहे हैं उनके मुताबिक इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने बढ़त बना रखी है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी बताई जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ने इन रुझानों को मानने से मना कर दिया है।
ये इतनी धांधली हुई है कि मेरे जैसा आदमी भी बिलबिला उठा कि यार हम इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान को हम एक नए दौर में दाखिल करना चाहते हैं और जो ट्रांजिशन पिछली हुई थी उसको हम आगे लेकर जा रहे थे, बड़ी खुशी थी। और आज जो कुछ किया गया वो तो हम दोबारा पाकिस्तान को 30 साल पीछे ले गए हैं। बिल्कुल उन्होंने आगे वोट दिए पूरे पाकिस्तान में उनके मैंडेट के साथ इस तरह की तौहीन, इस तरह की ज्यादती, जुल्म, ये नाकाबले बर्दाश्त है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शीरी रहमान ने भी मतगणना के दौरान गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।
बहुत ही खतरनाक बात है, इस पूरे इलेक्शन पर सवाल या निशान अब उठ रहा है। जो 3-4 घंटे से हम ट्रेंड देख रहे हैं, मुल्तान से लेके कराची तक, सेंट्रल पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, हमारे पास 250 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं।
ये थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता शीरी रहमान। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। आइए सीधे चलते हैं लाहौर में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमायला जाफरी के पास, जो पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार पाकिस्तान में हो रही चुनावी हलचल की जानकारी सुबह शाम आप तक पहुंचा रही हैं। शुमायला, अभी तक जो रुझान मिले हैं उनकी बुनियाद पर क्या ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान का बल्ला इस बार चल गया है?
संदीप, अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो अनकन्फर्म्ड और अनऑफिशियल हैं, जो ज्यादा आए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसने 2 घंटे पहले ऑफिशियल रिजल्ट को अनाउंस किया है, और ऑफिशियल रिजल्ट्स जो अभी आए हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। वो तो ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है उसमें इमरान खान की PTI ने 16, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की PMLN ने 3, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 2 सीट्स हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं और अनकन्फर्म्ड रिजल्ट्स हैं वो यही तस्वीर बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे आगे है, नेशनल असम्बली में 114 सीटें ले चुकी है। PMLN जो शरीफ की पार्टी है उनकी 64 सीटें हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 42 सीट्स हैं। अगर इन रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, लेकिन क्या उसके पास क्लियर मेजॉरिटी बन सकेगी? कम से कम इन अनकन्फर्म्ड रिजल्ट्स को अगर सामने रखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है। लगता यही है कि जो कोएलिशन की कोई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और शायद पार्लियामेंट थोड़ी सी हंग पार्लियामेंट।
शुमायला, जब अभी 2 घंटे 2.5 घंटे पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग के प्रमुख से जब संवाददाताओं ने सवाल पूछा था तो उनका भी ये कहना था कि बहुत मुमकिन है कि जो नतीजे मीडिया में चल रहे हैं वो हो भी सकते हैं, और उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसकी तूती बोलती रही है पंजाब में, वहाँ पर इस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया है इस बार? क्या वहाँ पर इमरान खान की पार्टी सेंध लगाने में कुछ कामयाब हुई है?
देखें, इमरान खान की पार्टी ने अगेन अनकन्फर्म्ड जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक पंजाब में काफी जगह बनाई है, क्योंकि पिछली असेंबलियों में वो बिल्कुल चंद लोगों की तादाद पे پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ مشتمل تھی, اور لاسٹ اسمبلی میں تو جو نواز شریف کی پارٹی تھی پنجاب راجیہ پنجاب میں ان کے لیے اپوزیشن نہ ہونے کے برابر تھی, وہ اتنی کلیئر اور ڈومینیٹنگ میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. لیکن اس بار پنجاب میں ابھی بھی مسلم لیگ نواز کا زور ہے. پنجاب اسمبلی میں 129 ان کی سیٹیں ہیں انآفیشیل انکنفرمڈ ریزلٹس کے مطابق, جبکہ پی ٹی آئی کی 122 سیٹس ہیں. تو سب سے آگے تو ابھی بھی پی ایم ایل اے نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ نتیجے درست ہوئے تو ایک بہت ہی اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن ابھی بہت سے ریزلٹس آنے باقی ہیں پنجاب اسمبلی کے, تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا بدل بھی سکتی ہے یہ سچویشن.
اچھا شمائلہ, یہ بتائیے کہ موٹے طور پہ کتنے بجے تک ہم امید کریں کہ آج پاکستان میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی سرکار بن رہی ہے, کتنے بجے تک کنفرم ہو سکتا ہے یہ؟
سندیپ, ہوا اس بار یہ ہے کہ ان الیکشن کی کمپائلیشن کے لیے انہوں نے کوئی ایپ بنائی تھی پاکستان کے الیکشن کمیشن نے, اور اپیرنٹلی جس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کام کرے گی وہ کام نہیں کیا. تو اس لیے جو ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں اگر وہ سامنے رکھا جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو روایت ہے نارملی ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا ہے کہ دن میں دوپہر میں شام میں کچھ حد تک یہ پکچر کافی کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا کون وزیر اعظم ہوگا. انآفیشیل انکنفرمڈ ریزلٹس جو ہسٹری ہے پاکستان میں وہ کافی حد تک درست ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم بی بی سی میں ہم تو آفیشیل ریزلٹس کے ساتھ ہی جائیں گے اور ہم انتظار کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی ٹیکنیکل گلیچز ہیں تو پھر ہم یہ کہہ نہیں ابھی سکتے کہ کب تک یہ نتیجہ ہو پائے گا. لیکن عام طور پہ آج کے دن اگلا جو دن ہوتا ہے اس میں یہ صورتحال کافی تک واضح ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ, یہ تھیں لاہور سے بی بی سی سنواد داتا شمائلہ جعفری. اور آئیے اب چلتے ہیں اسلام آباد, ورشٹھ پترکار احتشام الحق کے پاس. یدی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں احتشام الحق صاحب, تو بتائیں کہ پاکستان کے اخبار آج کس رنگ میں رنگے دکھ رہے ہیں, کیا سرخیاں نظر آ رہی ہیں اخبار کے پہلے پنے پر آپ کو آج؟
دیکھیں جی, بڑے بڑے اخبار جو ہیں انہوں نے اب کیونکہ رزلٹ کے بارے میں کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی, جیسا کہ ابھی شمائلہ بتا بھی رہی تھی کچھ ایشوز آ گئے ہیں ٹیکنیکل, لیکن اس کے باوجود کچھ اخبارات جو میرے سامنے ہیں دیکھ پاؤں گا انہیں. روزنامہ جنگ اردو کا سب سے بڑا اخبار ہے, وہ کہتا ہے کس کا تخت کس کا دھڑن تختہ. پھر اسی طرح ایکسپریس ٹریبون انگریزی کا, یہ کہتا ہے پی ٹی آئی انچز کلوزر ٹو وکٹری ایز رائیول کرائی فاؤل. پھر ڈیلی ڈان جو ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی پی ایم ایل این ریجیکٹس پول ریزلٹس. پھر ایک اور خبر اسی طرح کی اس میں کہ پاکستانی ہیڈ ٹو پولز ان گروپس ٹو میک دیئر چوائسز. تو اسی طرح سے باقی اخبارات بھی جو ہے نا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ وکٹری کی طرف جا رہے ہیں, اور پنجاب اسمبلی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ بتایا جا رہا ہے, سینٹر میں عمران کی گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی عمران کی گورنمنٹ سینٹر میں بنتی ہے تو باقی اور ملا کے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے پنجاب اسمبلی کا, کیونکہ کہتے ہیں پنجاب اگر کسی کے کچھ نہیں کر سکتا, پنجاب بڑا صوبہ ہے اسی اس کو پاکستان کہا جاتا ہے, وہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی حکومت بنا لیں گے. لیکن ابھی کیونکہ اخبارات یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ رزلٹ آنے میں کچھ دیر لگ گئی ہے, تو اصل رزلٹ آنے میں اور صحیح معنوں میں پکچر کلیئرٹی کے ساتھ اخبارات میں کل ہی آ پائے گی کہ کس کی سیٹیں کتنی آئی ہیں اور جو آفیشیل رزلٹ ہیں وہ کیا ہیں. جی
جی, بہت شکریہ اسلام آباد سے ورشٹھ پترکار احتشام الحق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور جو شروتا ہم سے ابھی جڑے ہیں کچھ وقت پہلے, انہیں ہم بتانا چاہیں گے پاکستان میں کل چناؤ ہوئے تھے, آپ جانتے ہیں شام 6 بجے کے بعد مت گننا شروع ہوئی, آدھی رات کے بعد صبح تڑکے تڑکے پہلا نتیجہ آیا, اور ابھی تک رجحانوں پر ہی پوری بات چل رہی ہے. اور رجحان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی آگے چل رہی ہے, لیکن انتم نتیجے آنے میں ابھی کافی وقت لگے گا. جیسے جیسے نتیجے آئیں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. برازیل, روس, بھارت, چین اور دکشن افریقہ سے مل کر بنے سموہ برکس کا سالانہ شکھر سمیلن آج سے جوہانس برگ میں شروع ہو رہا ہے. بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور شکھر سمیلن سے پہلے چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے ٹریڈ وار کو لے کر کچھ بیان دیا ہے. اس خبر پر اور جانکاری دے رہے ہیں دل نواز پاشا.
دکشن افریقہ کے جوہانس برگ میں آج سے شروع ہو رہے برکس سمیلن میں روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین, چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ, بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی, برازیل کے راشٹرپتی مشیل ٹیمیر اور دکشن افریقہ کے راشٹرپتی سیریل رامافوسا وارتا کریں گے. इस बार के सम्मेलन की थीम है अफ्रीका में ब्रिक्स समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। दक्षिण अफ्रीका ने इस सम्मेलन में 22 अन्य देशों के नेताओं को भी बुलाया है, जिनमें से 19 अफ्रीकी हैं। ब्रिक्स व्यापारिक समूह के 10वें सम्मेलन की सुर तय करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आए उद्यमियों से एकपक्षीय अनुबंधों को नकारने के लिए कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक व्यापार युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमें एकपक्षीयता और संरक्षणवाद को नकारने के लिए दृढ़ होना होगा। हमें व्यापार और निवेश, उदारीकरण और सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना होगा और साथ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक खुलेपन, समावेशी और संतुलित विकास की ओर ले जाना होगा और यही सबकी साझा जीत होगी। ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। अमरीकी व्यापार नीति के प्रति इन देशों का साझा विरोध इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स देशों के बीच अधिक व्यापार का आह्वान किया है। वहीं सम्मेलन में आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोगान से मुलाकात के दौरान सीरिया के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। जैसा कि हम अपने कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रवांडा, फिर युगांडा गए और अब दक्षिण अफ्रीका। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका महाद्वीप में व्यापार और निवेश को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोलेगा। अफ्रीका में भारत की इस सक्रियता की वजह जानने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने अफ्रीकी मामलों के जानकार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुरेश कुमार से बात की।
इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी की। इसमें भागीदारी के बाद जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अनेकों मंत्री जो है वो अफ्रीका के दौरे पे जाते रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत के लिए अफ्रीका के साथ आर्थिक जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए ये कदम है। प्रधानमंत्री जी रवांडा में जो अभी कहा है कि भारत अधिक से अधिक निवेश करना चाहता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटीज है जो हम कई सालों से इसको कोशिश कर रहे हैं। अब इसको लागू करने की कोशिश है, अभी तो थ्योरेटिकली चल रहा था ये सारा, अब इसको जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग जो है भारत जो है वो ज्यादा ज्यादा निवेश करना चाह रहा है ताकि भारत और अफ्रीका के बीच में जो राजनीतिक संबंध है और नॉन अलाइन मूवमेंट के डर्बन समिट के बाद जो आर्थिक मजबूती की बात थी वो अब उसको पूरा करने की जरूरत है, इस सराहनीय है।
चीन के राष्ट्रपति ने भी हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा किया, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा कर रहे थे। क्या जिस तरह से चीन का प्रभाव बना हुआ है अफ्रीकी देशों में व्यापार के मामले में, निवेश के मामले में, तो क्या उनकी कोशिश थी कि भारत को भी वो उसी स्थिति में लाने की कोशिश करें?
देखिए, जहां तक भारत और चीन के संबंधों की बात है अफ्रीका को लेके, तो चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे है राजनीतिक संबंधों में, आर्थिक संबंधों में और ट्रेड एंड कॉमर्स में। लेकिन भारत जो है वो थर्ड फोरम समिट के बाद से ही कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पैन अफ्रीकाई नेटवर्क और रीजनल इंटीग्रेशन इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स में, इनको लेके जो मुख्य बात कर रहा है भारत, अब उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। अभी चीन के राष्ट्रपति जी और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ही अफ्रीका के दौरे पे हैं। दोनों ही एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी चीनी राष्ट्रपति जी वो वेस्ट अफ्रीका के दौरे पे थे और भारत के प्रधानमंत्री वो सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के दौरे पे हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के दौरे पे हैं। और अब आज से जो ब्रिक्स समिट शुरू हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि भारत और चीन के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है व्यापार को लेके। अपने अपने विदेश नीति के तहत सब अपना अपना आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हम इसको भारत और चीन के बीच में कंपटीशन नहीं कहना चाहिए, वो ठीक नहीं रहेगा।
ये थे अफ्रीकी मामलों के जानकार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुरेश कुमार। कार्यक्रम में आगे मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के सबूत मिले, सुनेंगे आप रिपोर्ट। लेकिन पहले एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर। दिलनवाज पाशा कई अखबार लेकर स्टूडियो में मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं।
संदीप, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकते, कोई तस्वीर उन्हें पूरी तरह नहीं दिखा सकती, और उनकी जो गंभीरता है उस तक پوری طرح پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی ہی ایک خبر آج دلی کے اخباروں کی سرخی بنی ہے۔ راجدھانی دلی کے دل میں تین بچیاں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئیں، یہ آج کے اخبار بتا رہے ہیں۔ امر اجالا لکھتا ہے، بے درد دلی، بھوک سے راجدھانی میں تڑپ تڑپ کر ہوئی تین معصوم بچیوں کی موت۔ اور اسی پر دینک بھاسکر نے لکھا ہے، 8 دن سے بھوکی تین معصوم بہنوں نے دم توڑا، ڈاکٹر بولے پیٹ میں ان کا ایک دانہ نہیں تھا۔ اور جن تین بچیوں کی موت ہوئی ہے، ان کے پتا کرائے کے مکان میں رہتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، ان کا رکشہ لوٹ لیا گیا تھا، کئی مہینوں سے کرایہ نہیں دے پائے تو مکان مالک نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ایک دوست کے گھر گئے سر چھپانے کے لیے، جگہ تو ملی لیکن کھانا نہیں ملا۔ اور جو میڈیکل ان بچوں کا ہوا ہے، ڈاکٹر نے جب یہ بات کہی کہ ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں تھا تو سرکار نے اس پہ شک ظاہر کیا، اور دوبارہ سے میڈیکل بورڈ سے، دوسرے اسپتال کے ڈاکٹر سے ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کرایا جائے گا، اس بات کی پشٹی کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ بچیاں بھوک سے مری ہیں۔ اور جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ جب کوئی بھوک سے مر جاتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ صرف اس ویکتی کی تو نہیں ہو سکتی جو بھوک سے مر گیا، سماج کی، سرکار کی، ہم لوگوں کی، ادھیکاریوں کی، کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری ہے۔ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ ذمہ داریاں طے ہوں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو چناؤ ہوئے ہیں، عمران خان کی پارٹی بڑھت بنائے ہوئے ہے، یہ خبر سبھی اخباروں میں پہلے پنے پر ہے۔ کہیں مسکراتے ہوئے عمران خان ہیں اور ان کی پارٹی کے جو سمرتھک ہیں، انہوں نے جشن منایا تھا، اس کی بھی تصویریں الگ الگ اخباروں میں پہلے پنے پر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کا ذکر کریں گے جو آج جنستہ نے پہلے پنے پر چھاپی ہے، مدراس ہائی کورٹ نے مارن بندھوؤں کو آروپ مکت کرنے کا فیصلہ رد کر دیا ہے۔ جو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے انہیں سن ٹی وی نیٹورک کو لابھ پہنچانے کے لیے کے معاملے میں بری کیا تھا، مدراس ہائی کورٹ نے اب سنوائی کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کیا ہے۔ اور ایک خبر کیرل سے سرخی بنی ہے آج کے اخباروں میں، جہاں 2005 میں پولیس کی حراست میں موت کے معاملے میں وہاں کی عدالت نے 2 پولیس کرمیوں کو موت کی سزا سنائی ہے، تو یہ خبر بھی آج لگ بھگ سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے۔ اس کے علاوہ جو مراٹھا آندولن چل رہا ہے مہاراشٹر میں، اس میں کل ممبئی بند بلایا گیا تھا، اس میں ہنسا ہوئی، اس کے جواب میں بند کو واپس لے لیا گیا ہے۔ ہنسا سے جڑی تصویریں اور خبریں بھی آج الگ الگ اخباروں کے پہلے پنے پر ہیں۔ اور اب ذکر کریں گے انڈین ایکسپریس میں پرکاشت ایک خبر کا، جس میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی میں کہا ہے کہ جو ادھیکاری ہیں وہ اپنا نظریہ بدلیں انتر دھارمک وواہوں کو لے کر، اس میں رکاوٹ بنانے کے بجائے اس نظریے سے دیکھیں کہ جو ایک آج کے دور کا ہندوستان ہے اس میں دو دھرموں کے بیچ کے لوگوں کے بیچ اگر شادی ہوتی ہے تو اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ اور جیسا ہم نے اپنے کارکرم میں ذکر کیا، منگل گرہ پر پانی ملنے کے ثبوت ملے ہیں، یہ خبر بھی آج اخباروں کے پہلے پنے پر،
جیسا کہ دل نواز پاشا بتا رہے تھے منگل گرہ والی خبر، اور میں نے بھی کچھ دیر پہلے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو منگل گرہ پر پانی کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور اس بات سے منگل گرہ پر جیون کی سمبھاوناؤں کو بل بھی ملا ہے۔ اور جانکاری گرپریت کور کی زبانی۔
شودھ کرتاؤں کا ماننا ہے کہ منگل پر ملا پانی دکشنی دھروویہ برفیلے علاقے میں ایک جھیل کے روپ میں ہے۔ یہ جھیل قریب 20 کلومیٹر علاقے میں پھیلی ہے، جو برفیلی سطح سے لگ بھگ 1 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس سے پہلے ہوئے شودھ میں منگل کے دھراتل پر ترل جل کے سمبھاوت چنہ ملے تھے، لیکن یہ جل کے پائے جانے کا پہلا ایسا پرمان ہے جو ورتمان میں موجود ہے۔ ناسا کے کیوریوسٹی روور نے جن جھیلوں کے تل کا پتہ لگایا تھا، اس سے جانکاری ملتی ہے کہ اتیت میں منگل کی سطح پر پانی موجود رہا ہوگا۔ حالانکہ بے حد کمزور وایو منڈل کی وجہ سے منگل کی جل وایو پہلے کے مقابلے ٹھنڈی ہوئی ہے، جس کے پرینام سوروپ وہاں موجود جل برف میں بدل گیا ہے۔ یہ نئی کھوج مارسس کی مدد سے سمبھو ہو سکی ہے۔ مارسس مارس ایکسپریس آربٹ پر موجود ایک رڈار اپکرن ہے۔ حالانکہ مارسس یہ پتا نہیں لگا سکا کہ ترل جل کی گہرائی کتنی ہے، لیکن شودھ دل کا انومان ہے کہ یہ کم سے کم 1 میٹر ہو سکتی ہے۔ ادھیان کا نیتتو کرنے والے اٹالین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس کے پروفیسر روبرٹو اوروسی کہتے ہیں کہ یہ سمبھوتہ ایک بہت بڑی جھیل ہو سکتی ہے، جو کچھ ملا ہے وہ جل ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اٹالین اسپیس ایجنسی کے پرمکھ روبرٹو بٹسٹن نے اسے ایک مہتوپورن کھوج بتایا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ منگل پر لگ بھگ 3 ارب ورش پہلے بھرپور پانی تھا، लेकिन मंगल के वातावरण में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पानी खत्म हो गया। लेकिन हमें बर्फ के बारे में पता है और अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें हमारे पास इस बात का साक्ष्य है कि मंगल की सतह के नीचे झील है जिनमें बहुत पानी मौजूद है। ये बहुत उत्साहित करने वाली जानकारी है।
ये थे इटालियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख रॉबर्टो बटिस्टन के शब्द। ब्रिटेन में ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मनीष पटेल का कहना है कि इस खोज के बाद मंगल पर जीवन की संभावना बढ़ सकती है।
The key thing that we've never observed before is actual liquid water, and this is the first kind of...
बड़ी बात ये है कि हमें इससे पहले तरल पानी के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दबाव और तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पानी में बदल सकता है। पानी की मौजूदगी का मतलब है जीवन की मौजूदगी। इस खोज से ये पता चलना है कि हमें मंगल पर कहाँ और किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये छुपे हुए खजाने के नक्शे की तरह है।
मंगल ग्रह पर तरल जल की मौजूदगी का सबूत देने वाली ये खोज उन शोधार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है जो मंगल पर अतीत और वर्तमान की जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। हालांकि खोजी गई झील का अभी और गहन अध्ययन किया जाएगा, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।
मंगल ग्रह पर तरल पानी मिला, रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत कौर। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लंदन, लेकिन वहां पर आपको क्रिकेट के मैदान पर नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि आज आपको लेकर जाएंगे हॉकी के मैदान पर, क्योंकि आज महिला विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम आयरलैंड के साथ भिड़ेगी। ये भारतीय महिला हॉकी टीम का दूसरा मुकाबला है। विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के साथ 1-1 कर ड्रॉ किया था मैच, जिसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, आयरलैंड और भारत दोनों ही पूल बी की टीम है, जिसके अंदर आयरलैंड 3 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर है। महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर रही हैं रानी रामपाल। और अगर क्रिकेट की ओर जरा आपका ध्यान आकर्षित करें तो वहां पर डिफेंडिंग चैंपियन भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 19 सितंबर को आमने सामने होंगी। आईसीसी ने मंगलवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल घोषित किया। एशिया कप 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम हिस्सा लेगी। क्वालिफायर मुकाबले बुधवार से शुरू होंगे, जिसमें यूएई, सिंगापुर, ओमान, नेपाल, मलेशिया और हांगकांग की टीमें उतरेंगी। और अब खबर बॉक्सिंग के रिंग से। मिजोरम के 22 वर्ष के बॉक्सर एंटी लाल बियाकिमा की चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुए प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कजाकिस्तान के खिलाड़ी हसन बॉय दसनमोव को हराकर प्रेसिडेंट्स कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व नंबर 1 के खिलाड़ी को हराकर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अब भारतीय बॉक्सिंग की दुनिया में उन्हें एक उभरते हुए सितारे की तरह देखा जा रहा है।
खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा bbchindi.com पर पाकिस्तान चुनाव के नतीजों को, जो भी नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर एक लाइव पन्ना इस समय चल रहा है, आपके लिए ख़ास तौर पर चलाया जा रहा है। वहाँ आकर आप पल पल जो घटनाक्रम पाकिस्तान में बदल रहा है उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अब चलते चलते ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर सुनेंगे दिलनवाज पाशा से।
पाकिस्तान में कल हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी को बढ़त मिल रही है। रुझानों के बाद इमरान खान के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। यूरोपीय संघ के आयुक्त जों क्लॉड यूंकर और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक व्यापार युद्ध से बचने के लिए कई उपाय करने पर सहमत हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी सीरिया में हुए सिलसिलेवार हमलों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वघोषित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में ये हमले किए हैं। नाइजीरिया में किसानों और चरवाहों के बीच हिंसा पर आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष में अब तक 1300 लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार लोग बेघर हुए हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेव द चिल्ड्रन ने यमन में चल रहे युद्ध की वजह से नए हैजा संकट की चेतावनी दी है। जुलाई के पहले सप्ताह में ही हैजा के 3000 नए मामले सामने आए हैं और ब्राजील की सेना ने रियो डी जनेरो के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती रोजीनिया में व्यापक अभियान शुरू किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। अगला प्रसारण दिन भर हर दिन की तरह आज भी शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।